तो ग्रंथसार में आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो जो देखने में तो बच्चों की कहानी लगती
है ना,
हाँ बिल्कुल,
ऊपर से तो यही लगता है।
पर इसकी परतें इतनी गहरी हैं, दोस्ती, जीवन, यहाँ तक कि मौत और शब्दों की ताकत, कितने बड़े सवाल हैं इसमें।
सही कहा, हम बात कर रहे हैं ईबी वाइट की अमर रचना शार्लट्स वेब की।
हाँ, और ये सिर्फ बच्चों के कमरे तक ही सीमित नहीं है, ये तो हर उम्र के पाठक के लिए एक आईने जैसी है।
और ईबी वाइट, जिनका पूरा नाम एल्विन ब्रुक्स वाइट था, वो अपने समय के मतलब बहुत माने हुए लेखक थे, निबंधकार, स्टाइलिस्ट।
उनकी भाषा में वो सादगी है ना,
सल
एकदम साफ और प्रकृति से जुड़ाव।
बिल्कुल, कहा जाता है कि उनकी कहानियों में यथार्थ और एक अजीब सी प्यारी सी भावुकता का संगम है जो सीधा दिल को छूता है।
हाँ, और शायद द न्यूयॉर्कर के लिए जो उन्होंने लिखा उससे उनकी शैली और भी निखरी।
हो सकता है। और इस कहानी की प्रेरणा कहाँ से मिली? उनके अपने फार्म से, मेन में।
अच्छा,
कहते हैं उन्होंने वहां एक सुअर जिसे पाला था और एक मकड़ी, उनके जीवन को बहुत करीब से देखा, उनकी दिनचर्या, उनका संघर्ष, अंत।
और वही सब इस किताब में ढल गया।
बिल्कुल, 1952 में आई शार्लट्स वेब और गर्थ विलियम्स के वो चित्र, वो तो कहानी का हिस्सा बन गए।
हाँ, वो चित्र तो भूल ही नहीं सकते, आते ही ये किताब बहुत सफल हुई, और इसे सिर्फ बच्चों की किताब कहना वो सही नहीं है।
नहीं, ये अमेरिकी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वाइट के लेखन का, उनके जीवन दर्शन का शायद सबसे अच्छा उदाहरण।
तो चलिए फिर इस कहानी के ताने बाने में उतरते हैं।
कहानी हमें ले जाती है ज़करमैन फार्म। माहौल तो सुंदर है, गांव का जीवन शांत, लेकिन वहां एक व्यवहारिकता भी है, मतलब भावनाओं से ज्यादा जरूरतें।
हाँ, फार्म लाइफ की सच्चाई।
वही हमारी मुलाकात होती है 8 साल की फर्न एरेबल से। एक सुबह वो देखती है कि उसके पिता कुल्हाड़ी लेकर सुअर बाड़ी की तरफ जा रहे हैं।
और उसे पता चलता है कि रात में जो सुअर के बच्चे हुए उनमें से एक,
हाँ, एक बहुत छोटा है, कमजोर, रंट जिसे कहते हैं, और उसे खत्म करने जा रहे हैं।
और यहीं फर्न का वो सवाल आता है जो पूरी कहानी की दिशा तय कर देता है एक तरह से।
बिल्कुल, वो अपने पिता से कहती है, ये अन्याय है, अगर मैं पैदा होते समय बहुत छोटी होती तो क्या आप मुझे मार देते?
कितना सीधा लेकिन कितना गहरा सवाल है ये।
हाँ, एक मासूमियत भरी दलील जो जीवन के अधिकार और करुणा की बात करती है, कि क्या सिर्फ कमजोर होना मरने का कारण हो सकता है?
और फर्न की जिद काम कर जाती है।
हाँ, वो उस नन्हे सुअर के बच्चे को बचा लेती है, उसका नाम रखती है विल्बर,
विल्बर,
उसे बोतल से दूध पिलाती है, गुड़िया की गाड़ी में घुमाती है, मतलब एक दोस्त की तरह पालती है। एक बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है उनके बीच।
विल्बर की शुरुआत तो प्यार और सुरक्षा भरी रही,
बिल्कुल,
तो कहानी की शुरुआत में ही ये जीवन की पवित्रता का विचार आ जाता है। फर्न जैसे बचपन की उस सहज नैतिकता का प्रतीक है जो नियमों से परे है।
सही कहा, लेकिन ये मासूमियत कब तक टिकती है?
वही,
विल्बर जैसे जैसे बड़ा होता है, उसे घर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो आखिर में उसे फर्न के चाचा होमर ज़करमैन के फार्म भेज दिया जाता है।
और यहां आकर विल्बर के लिए सब कुछ बदल जाता है।
हाँ, पहली बार वो अकेलापन महसूस करता है, वो दोस्त बनाने की बहुत कोशिश करता है खलिहान के दूसरे जानवरों से, हंस, भेड़े, मेमने, सबसे बात करने की कोशिश।
लेकिन वो सब अपनी धुन में,
बिल्कुल, कोई उसे ज्यादा भाव नहीं देता, वो बेचारा अकेला रह जाता है।
और अक्सर ऐसे ही अकेलेपन में शायद गहरे रिश्ते बनते हैं।
हाँ बिल्कुल, एक शाम जब विल्बर बहुत उदास था, उसे ऊपर से एक धीमी साफ आवाज सुनाई दी।
रहस्यमयी आवाज।
हाँ, जिसने उससे दोस्ती का वादा किया। अगली सुबह विल्बर की नजर दरवाजे के ऊपर बने एक जाले पर पड़ी और वहां थी शार्लेट ए कैबटाका।
एक बड़ी भूरे रंग की मकड़ी।
हाँ, शुरू में विल्बर थोड़ा हिचकता है शार्लेट के खाने की आदतों को देखकर, शायद मक्खियां खाना, पर धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक बहुत ही असाधारण और गहरी दोस्ती पनप जाती है।
ये दोस्ती ही कहानी का दिल है ना, एक भोला सुअर और एक बुद्धिमान मकड़ी, सब कुछ अलग।
बिल्कुल,
लेकिन वाइट ये दिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती इन बाहरी अंतरों से कहीं ऊपर होती है। और शार्लेट का किरदार, वो कितना महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल
वो सिर्फ बुद्धिमान नहीं
नहीं,
है,
वो व्यवहारिक भी है, संवेदनशील भी, वफादार भी, एक नैतिक केंद्र जैसी है वो कहानी में।
हाँ, वो विल्बर के लिए सिर्फ दोस्त नहीं, एक गाइड, एक रक्षक बन जाती है।
तो गर्मी के दिन आराम से बीत रहे थे, विल्बर खलिहान में रम गया था, शार्लेट की दोस्ती में खुश था।
हाँ,
पर तभी एक दिन खलिहान की सबसे बूढ़ी भेड़ ने बातों बातों में,
वो राज खोल दिया।
हाँ, विल्बर को वो सच बता दिया जिससे वो अनजान था, कि वसंत में जन्मे सुअरों को क्यों इतना खिलाया पिलाया जाता है।
क्रिसमस के लिए।
हाँ, क्रिसमस भोज के लिए, ये सुनकर विल्बर के तो होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गया, चीखने लगा,
मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ।
हाँ, मुझे बचाओ कोई, मुझे बचाओ।
ये कहानी का मुख्य संघर्ष है, विल्बर के जीने की इच्छा और कृषि जीवन की वो कठोर सच्चाई। व्हाइट यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेते, बस उस स्थिति को दिखाते हैं।
और इसी निराशा के पल में शार्लेट अपना वो वादा करती है जो सब कुछ बदल देता है।
हाँ,
वो अपनी शांत स्थिर आवाज में विल्बर से कहती है, तुम मरोगे नहीं, मैंने तुम्हें बचाने का फैसला कर लिया है।
ये सिर्फ दिलासा नहीं था,
नहीं, ये एक संकल्प था, एक योजना की शुरुआत।
और यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। शब्दों की शक्ति, ये थीम सामने आती है।
बिल्कुल, शार्लेट की योजना क्या थी? वो उसे शारीरिक रूप से तो बचा नहीं सकती थी।
उसकी ताकत थी उसकी बुद्धि, उसका हुनर, जाला बुनना।
हाँ, उसने फैसला किया कि वो अपने जाले में शब्द बुनेगी, ऐसे शब्द जिनसे इंसानों को लगे कि विल्बर कोई आम सुअर नहीं है,
बल्कि चमत्कारी है।
हाँ, असाधारण है, चमत्कारी है। ये अपने आप में एक सवाल है, क्या शब्द सच में हकीकत बदल सकते हैं?
क्या कहानी सुनाना जीवन बचा सकता है?
बिल्कुल, लेकिन इस योजना के लिए शार्लेट को मदद चाहिए थी, और यहाँ एंट्री होती है टेम्पल्टन की। चूहा टेम्पल्टन।
टेम्पल्टन बड़ा यादगार किरदार है, वो भी एकदम स्वार्थी।
हाँ, पूरी तरह से। उसका एक ही मकसद है, खाना और कबाड़। वो शार्लेट के परोपकार का, विल्बर की मासूमियत का एकदम उल्टा है।
वो कहानी में हास्य भी लाता है और एक तरह का यथार्थवाद भी, है ना?
बिल्कुल, दुनिया में सिर्फ शार्लेट जैसे लोग नहीं होते, लेकिन मजे की बात यह है कि शार्लेट टेम्पल्टन की इसी स्वार्थपरता का इस्तेमाल करती है।
हाँ, उसे खाने का लालच देकर काम निकलवाती है। ये शार्लेट की व्यावहारिकता भी दिखाता है।
सही कहा, वो जानती है दुनिया कैसे चलती है। तो शार्लेट रात भर मेहनत करती है, सुबह जब लोग खलियान का दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं।
क्या देखते हैं?
शार्लेट के जाले के बीचों बीच साफ अक्षरों में बुना हुआ था सम पिग,
कोई खास सुअर।
बारों में तस्वीरें, विल्बर रातों रात सेलिब्रिटी बन गया।
और व्हाइट का वो हल्का सा व्यंग्य, इंसान इसे चमत्कार मान रहे हैं पर असली कलाकार शार्लेट, वो तो पर्दे के पीछे है।
बिल्कुल, हम अक्सर नतीजों पर ध्यान देते हैं, उसके पीछे की मेहनत बुद्धि उसे नजरअंदाज कर देते हैं।
शार्लेट ने तो विल्बर की पूरी ब्रांडिंग ही बदल दी, उसे साधारण से असाधारण बना दिया।
हाँ, ताकि समाज उसे महत्व दे, लेकिन एक चमत्कार काफी नहीं था,
प्रसिद्धि बनाए रखनी थी।
बिल्कुल, शार्लेट को नए शब्दों की जरूरत थी। फिर से टेम्पल्टन की मदद ली गई। वो कूड़े के ढेर से पुराने अखबार, डिब्बों के टुकड़े लाता है
जिन पर शब्द लिखे होते हैं।
हाँ, उनसे शार्लेट प्रेरणा लेती है। अगला संदेश आता है टेरिफिक, शानदार।
फिर रेडियंट, तेजस्वी।
हाँ, हर नए शब्द के साथ विल्बर की ख्याति बढ़ती गई और उसका जीवन और सुरक्षित होता गया। सही सवाल है,
विल्बर वाकई में शानदार था अपनी मासूमियत में, तेजस्वी था अपनी जीने की इच्छा में। शायद शार्लेट के शब्द बस उन अनदेखे गुणों को दुनिया के सामने ला रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे कहानी सुनाने का नजरिया किसी का मूल्य बदल सकता है।
फिर कहानी पहुंचती है अपने चरमोत्कर्ष पर, काउंटी मेला।
हाँ, बड़ा इवेंट।
मिस्टर ज़करमैन विल्बर को मेले में ले जाते हैं, उम्मीद है कि वहाँ पुरस्कार जीतकर विल्बर का भविष्य पक्का हो जाएगा।
विल्बर उत्साहित भी है, डरा हुआ भी, खासकर उस विशाल सुअर अंकल को देखकर।
हाँ, शार्लेट भी विल्बर के साथ मेले में आई है, लेकिन अब वो बहुत थक चुकी है, कमजोर हो गई है, उसका जीवन चक्र अंत के करीब है।
मेले का ये सीन, इसमें जीवन के कितने रंग हैं। एक तरफ विल्बर को बचाने की कोशिश, इनाम की उम्मीद, भीड़, दूसरी तरफ शार्लेट का वो शांत समर्पण और ढलता जीवन।
हाँ, मेले के कूड़े से एक शब्द ढूंढ कर लाता है शार्लेट, अपना अंतिम संदेश बुनती है, हम्बल, विनम्र।
विनम्र
विल्बर के स्वभाव का एकदम सही वर्णन।
बिल्कुल।
अगले दिन विल्बर को पहला पुरस्कार तो नहीं मिलता, वो अंकल को मिलता है, लेकिन उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है।
और मिस्टर ज़करमैन घोषणा करते हैं,
हाँ, भीड़ के सामने, कि ये असाधारण सुअर अब हमेशा फार्म पर शान से रहेगा। विल्बर बच गया, शार्लेट ने अपना वादा पूरा किया।
ये जीत का पल है, लेकिन इसमें विदाई की उदासी भी है। शार्लेट का काम पूरा हो गया, उसका समय समाप्त हो रहा है।
हाँ, कहानी यहाँ मृत्यु को बहुत सहजता से दिखाती है, कोई ड्रामा नहीं, बस एक गरिमा।
सही।
जब सब लोग विल्बर की जीत मना रहे थे, शार्लेट अपने जाले में अकेली शांत थी। मेले के बाद जब विल्बर उसे मिलने आता है, तो वो उसे बताती है कि वो अब फार्म वापस नहीं जा पाएगी।
लेकिन उसने विल्बर के लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ा है।
हाँ, एक अंडे की थैली, एग्जैक्ट, जिसमें उसके सैकड़ों बच्चे हैं, वो विल्बर से विदा लेती है।
शार्लेट की मृत्यु को व्हाइट ने त्रासदी नहीं बनाया, वो जीवन चक्र का हिस्सा है। शार्लेट खुद कहती है, आखिरकार जीवन क्या है, हम पैदा होते हैं, थोड़ी देर जीते हैं, हम मर जाते हैं। कितना शांत नजरिया है ये मृत्यु पर।
बिल्कुल, और ये हमें त्याग का मतलब भी सिखाती है। शार्लेट ने अपनी सारी ऊर्जा, अपना जीवन दोस्त को बचाने में लगा दिया। यही सच्ची दोस्ती है।
विल्बर का दिल टूट जाता है, जाहिर है, लेकिन वो जानता है कि उसे शार्लेट की विरासत संभालनी है।
हाँ, वो फिर से टेम्पल्टन को मनाता है, जो पहले तो मना करता है कि वो छत से अंडे की थैरी उतार कर उसे दे,
और टेम्पल्टन मान जाता है।
हाँ, अपने स्वार्थ के बावजूद वो ये काम करता है। विल्बर बहुत सावधानी से उस थैली को मुंह में दबाकर फॉर्म वापस लाता है और पूरी सर्दी उसकी देखभाल करता है।
यहाँ विल्बर का विकास दिखता है, जो बच्चा पहले बचाया गया था वो अब खुद रक्षक बन गया है।
सही कहा, उसने शार्लेट से सिर्फ जीवन नहीं पाया, जिम्मेदारी निभाना भी सीखा। फिर वसंत आता है, उस थैली से सैकड़ों नन्ही मकड़ियां निकलती हैं।
एक खूबसूरत नजारा होगा।
हाँ, और फिर एक दिन हवा चलती है और वो सब अपने रेशमी धागों के सहारे उड़कर दुनिया में निकल पड़ती हैं।
विल्बर उन्हें जाते देख दुखी हो जाता होगा, फिर से अकेला।
हाँ, उसे फिर अकेलेपन का डर लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि तीन छोटी मकड़ियां वहीं रुक गई हैं।
अच्छा,
शार्लेट की बेटियां जॉय, एरेनिया और नेली, वो विल्बर के साथ रहने का फैसला करती हैं।
तो विल्बर का जीवन फिर दोस्ती से भर गया।
हाँ, वो ज़करमैन फार्म पर एक लंबा संतुष्ट जीवन जीता है, हमेशा अपनी दोस्त शार्लेट को याद करते हुए।
और किताब का वो आखिरी वाक्य, शार्लेट को सच्ची श्रद्धांजलि।
हाँ, ये अक्सर नहीं होता कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो एक सच्चा दोस्त और एक अच्छा लेखक हो। शार्लेट दोनों थी।
दोस्ती और रचनात्मकता, दोनों को एक साथ सम्मान। शार्लेट ने विल्बर को बचाया भी और उसकी कहानी भी लिखी अपने जाले से।
लेकिन फर्न का क्या हुआ, वो लड़की जिसने ये सब शुरू किया था?
फर्न?
हाँ,
कहानी में वो धीरे धीरे पीछे हट जाती है जैसे जैसे वो बड़ी होती है,
किशोरावस्था में।
हाँ, उसका ध्यान जानवरों से हटकर इंसानी दुनिया की तरफ, हेनरी फसी नाम के लड़के की तरफ जाने लगता है। उसका खलिहान आना कम हो जाता है।
व्हाइट इसे बड़े सहज तरीके से दिखाते हैं, बड़े होने की प्रक्रिया।
बिल्कुल, मासूमियत खोती नहीं, बस रूप बदल लेती है। फर्न की जानवरों से बात करने की क्षमता शायद खत्म नहीं होती, बस प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ये भी जीवन का चक्र है।
और व्हाइट की लिखने की कला, भाषा इतनी सरल, इतनी बहती हुई।
हाँ, जैसे नदी बह रही हो, फिर भी हर वाक्य में गहराई। प्रकृति का वर्णन, फार्म का माहौल, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है।
बिल्कुल, और वो सर्वज्ञ कथावाचक की तरह हमें सबके मन की बात बताते हैं, पर बिना भारी भरकम विश्लेषण के।
हाँ, और वो प्रतीक मकड़ी का जाला सिर्फ जाला नहीं है, वो जीवन, मृत्यु, जुड़ाव, रचनात्मकता, सबका प्रतीक है।
खलियान एक छोटे समाज जैसा है, बदलते मौसम, जीवन के उतार चढ़ाव जैसे।
ये सब कहानी को वो दार्शनिक गहराई देते हैं।
शार्लेट्स वेब पढ़कर मन पर एक शांत सा गहरा असर होता है। ये मौत जैसे विषय से डर कम करती है, उसे समझने में मदद करती है।
हाँ, और ये दिखाती है कि साधारण चीजों में भी कितना असाधारण छुपा हो सकता है, और सच्ची दोस्ती में कितनी ताकत है।
शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी ये उतनी ही ताजी और प्यारी लगती है।
हाँ, इसके मुख्य संदेश बहुत साफ है, हर जीवन कीमती है, चाहे छोटा हो या कमजोर।
सच्ची दोस्ती में त्याग, वफादारी और समझ होती है।
मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक हिस्सा है जिसे स्वीकारना होता है।
और शब्दों में दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की ताकत है, जीवन बचाने की भी।
तो ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं भी किसी भी रूप में पनप सकती है।
और ये भी कि रचनात्मकता और करुणा मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं, वे जीवन दे सकते हैं।
शार्लेट्स वेब आज भी इसलिए दिलों को छूती है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हर रिश्ते में सच्चाई और हर जीवन में गरिमा खोजना कितना जरूरी है।
और ये कि सच्चा स्नेह और यादगार यादें मौत से भी आगे तक जाती हैं। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।